जी बिस्मिल्लाह कीजिए, जी बिस्मिल्लाह करें, जी जी इरशाद
जी। सर ये आज मेरे जहन में एक सवाल आया कि सर जैसे कि औरत जो है उसको तख्लीकी निजाम की एक अहम रुकन कहा गया है और उसका ज़ाहरा एक उसमें एक हिस्सा है, तो फिर सर कुरान हकीम में मर्द को एक दर्जा फजीलत या अफजल क्यों बताया गया, ये एक सवाल है।
असल बात ये है कि दोनों ही अहम हैं। हजूर अलैहिस्सलाम के खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पे क्या इरशाद था, किसी को किसी पे कोई बर्तरी नहीं, ना काले को गोरे पे, ना गोरे को काले पे, ना अजमी को अरबी पे, ना अरबी को अजमी पे। बर्तरी सिर्फ उसको हासिल है जिसको तकवा हासिल है। ये फरमाया या नहीं, ये पढ़ा या नहीं आपने?
जी जी सर बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया।
अब जरा सा गौर करें, ये तख्लीकी निजाम में क्या कुत्ता बिल्ली जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते क्या, वो नहीं कर रहे काम?
जी सर।
मतलब है क्या बच्चे जनना जो है, बच्चा पैदा करना क्या सिर्फ इंसान का शर्फ है, औरत का शर्फ है? नहीं, गाय भैंस बकरी चूहा बिल्ली सब बच्चे जन रहे हैं या नहीं?
जी सर।
सारे मैमल्स जो हैं, देखिए ये मादी जोन का, मैं आजकल मेरे पे भूत सवार हो गया है कि ये सारा खेल तीन और हीन का है। तीन मैंने कीचड़ और हीन मैंने मुकर्रर मुद्दत। अब ये तख्लीकी निजाम जो है ये मादी जोन में या ऊपर के जोन में भी है?
सर क्या अभी तो मादी जोन में
है? नहीं अभी नहीं, हमेशा से था।
नहीं सर, तख्लीक तो अल्लाह ने भी तो किया।
हाँ तख्लीक अल्लाह ने की और हर जोन में खुद उसको कंट्रोल किया, नोए बनाई ना अल्लाह ने, आगे एक मैकेनिज्म बनाया कि हर नौ खुद को रिप्रोड्यूस करती है। गौर करें भाई, कुत्ता एक नौ है ना, कुत्ता अपनी नौ को रिप्रोड्यूस कर रहा है। फर्द जो है वो क्या है? नौ का रिप्रेजेंटेटिव है ना। अब बिल्ली क्या कर रही है? वो अपनी नौ को रिप्रेजेंट कर रही है। चूहा क्या कर रहा है? वो अपनी नौ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो रिप्रोडक्शन को महज देखें, बात ये इस तरह से नहीं है, बात यूं है कि दोनों की जिस्मानी साख्त डिफरेंट है, इसलिए मेहनत मुशक्कत के बज़ाहिर मेहनत मुशक्कत के काम मर्द के जिम्मे डाल दिए। ठीक है
जी जी।
सारा खेल तो औरत के जहन का है या मर्द के जहन का है? बादशाह मर्द भी हुए, बात मलकाएं औरतें भी हुई, मलका सबा भी थी तो उधर शहनशाह अपना हजरत सुलेमान भी बादशाह थे। देखे सलाहियतें एक जैसी हैं, किसमें? मर्दों में और औरतों में सलाहियतें एक जैसी हैं, जो रूहानी सलाहियतें हैं। फिर जहनी सलाहियतें क्या? मादाम क्यूरी ने रेडियम नहीं इजाद किया, कितनी साइंसदान औरतें हुई। मर्दों को यानी कि ये हैवानी सतह पे रिप्रोडक्शन का एजाज औरत के हाथ में, जहनी सतह पे दोनों बराबर है, रूहानी सतह पे भी दोनों बराबर है। अब हमारे मुआशरे ने, चूंकि ये मेल शेवेनेस्टिक दौर गुजरे, मर्दों की बर्तरी का एक 10,000 साल का दौर था, इससे पहले औरतों का दौर था, ये 17 दफा ये 10,000 साल के दौर गुजर चुके हैं। एक दौर आता है जिसमें औरतों की हुकूमत होती है, औरतों की सुप्रीमेसी होती है, उसको क्या कहते हैं, मैट्रियार्की। ये पैट्रियार्की और मैट्रियार्की, ये दो इस्तलाहें सुन लें, कभी देखिए पढ़ के, मतलब सर्च करें। माँ की हकूमत, हाथियों में, चींटियों में, सब जगह माँ की हकूमत है, शहद की मक्खी में माँ की हकूमत है
जी।
मैट्रियार्की और करें, लेकिन शेर में आके, दरिंदगी में आके वहां मर्दों के तो ये बात क्लियर हो गई आपके जहन में या नहीं?
I'm sorry सर, आपकी आवाज चली गई थी, आपने शेर तक बात की थी और उसकी
बस मैं उसके बाद खामोश हो गया था जी, माफी चाहता हूँ।
अच्छा।
मैं खामोश हो गया कि आप जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये बात वाजे हुई कि देखें, ये सिर्फ मटेरियल जोन में औरत तख्लीकी कारकुन है, तीन और हीन। इस जोन में, ये जो 50 साल का 100 साल का जोन है, आप देखें ना, ये जो सलाहियत है, ये औरत को कितना अरसा हासिल रहती है, फर्ज करें उसे 14 साल की उम्र में हासिल हुई, उससे पहले तो नहीं होती। उसके बाद
अच्छा सर, आपका I'm very sorry सर, लेकिन सर मुझे ये समझ नहीं आ रही, जब हर तरह से दोनों की सवाल जवाब, अच्छाई बुराई सब बराबर तोली जा रही है, तो उनको असल उनकी जिस्मानी ताकत की वजह से
नहीं, नहीं, ये तो हमने अपने शौरी निजाम में, मैंने अभी क्या अर्थ किया कि दौर गुजरते हैं, कभी मैट्रियार्की कभी पैट्रियार्की होता रहा है ना, कभी जी। अब देखे ना, मलका सबा के जर्नैल जो थे सारे मर्द थे, वो उनसे काम लेती थी
जी।
इसी तरह क्या हुआ, बादशाह भी गुजरे, क्या मतलब हुआ, देखे जो ज़हनी सलाहियतें वो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि सब में मौजूद हैं, कौन इस्तेमाल करता है कौन नहीं करता, रूहानी सलाहियतें भी सबको हासिल हैं। मैंने अभी आपको हजूर अलैहिस्सलाम के खुतबे हज्जतुल विदा में से एक जुमला अर्ज किया, आप जरा उसकी बारीकी को तो समझे, किसी को कोई बर्तरी नहीं है, लेकिन दोनों का अपना अपना रोल तो है ना भाई। फिजिकल रैल में जब आप रूह की सतह पे है, अब बच्चे में कोई शऊर है इसका, अब 50, 60, 70 साल के बाद मर्द और औरत दोनों बराबर नहीं हो जाते हैं, कोई सेक्स का तसव्वुर रहता है दोनों में
नहीं सर,
क्या मतलब हुआ। ओ भाई, ये इंतहाई टेम्परेरी फेज है जिसको हमने बाजा बजाया हुआ है, सारी उम्र उसी का बाजा बजा रहे हैं। मैंने आपको एक लॉजिकल बात अर्ज की है, बच्चे को मतलब 5 साल के बच्चे को कोई शऊर है कि मैं और लड़का हूं या औरत हूं, ये तो हम उसे शऊर दे रहे ना, नहीं तुम लड़के हो तुम्हारे बाल इस तरह कटेंगे, तुम इस तरह के कपड़े पहनोगे, और करें
जी बिल्कुल सही जी।
बच्चे में तो ये शौरी नहीं है, वहां तो बच्चे की शक्ल से देख के पता ही नहीं चलता लड़का लड़की है
जी, बिल्कुल छोटे बच्चे का नहीं,
ठीक है। अब
जी समझ आ गए,
देखें ये सारा निजाम कुछ और है, हम जो समझे बैठे हैं वो कुछ और है। हम क्या इल्तजा कर रहे हैं, अल्लाह की बात को उस तरह समझो जिस तरह अल्लाह ने बनाई है या जिस तरह वो है, जिस तरह अल्लाह उसे जानता है। इसीलिए देखे ना, ये जो बात बैनुस सतूर नहीं कही गई, ये बिल्कुल वाजे कही गई कि एक इल्मे हसूली है, एक इल्मे लुदनी है और एक इल्मे हजूरी है। जरा इन अलूम की डेफिनेशन पे गौर तो करें, वो इल्म जो मैंने और आपने अपने लिए मुनासिब समझा उसका हमने नाम इल्मे हसूली रख दिया, इल्म हासिल किया, जो मैं जानता हूँ ये मेरा इल्मे हसूली हो गया, जो मैंने हासिल किया कहाँ से, कहाँ से हासिल किया, लोगों से, معاشرے سے، اپنے آبا و اجداد سے، اپنے ماں باپ سے. ایک علم وہ ہے جو اللہ عطا کرتا ہے، اس کا نام ہے علم لدنی. اور پھر ایک علم
آپ کو تصورات میں آتا ہے نا سر، جو آپ کو الہام
نہیں، وہ ہے نا سر. میں ابھی عرض کرتا ہوں، ایک علم لدنی ہے جو اللہ خود عطا کرتا ہے. اب تیسرا درجہ علم حضوری ہے. علم حضوری وہ علم ہے کہ دیکھے نا، جو میرے لیے جو چیز غیب ہے، جو چیز میرے سامنے حاضر نہیں ہے، وہ اللہ کے تو سامنے حاضر ہے نا.
بے شک.
تو جو چیز اللہ کے سامنے حاضر اور جس طرح سے حاضر ہے، اگر میں اس کو اس طرح سے سمجھوں تو یہ علم حضوری ہو گیا. اور کریں، اگر میں چیزوں کو اللہ کے پرسپیکٹو سے دیکھ کر بات کو سمجھ رہا ہوں تو مجھے علم حضوری حاصل ہے. اور اگر اللہ مجھے خود سجھا رہا ہے، مجھے عقل شعور نہیں ہے. اب اسی بات کو دیکھیے، کیا کہا ہم نے کہ ایک درجہ ہے شعور کا، یعنی ہمارے یہ شعوری نظام کا جس میں یہ ساری باتیں، ایک درجہ الہام کا. قرآن نے بتایا نا، فلحامہا فجورہا و تقوہا. کس نے بتایا؟
جی سر،
قرآن نے، کہ اللہ الہام کرتا ہے. الہام کرنے کا مطلب کہ کس کے بارے میں؟ فجور کے بارے میں، تقوہ کے بارے میں، یعنی کہ غلطی کے بارے میں اور درست کے بارے میں، بے احتیاطی کے بارے میں اور احتیاط کے بارے میں.
جی
کون مطلع کر رہا ہے؟ فل ہا مہا فجور ہا و تقوہ. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب کریم ارشاد فرما رہا ہے. اس کے بعد تیسرا درجہ ہے، میں نے کہا علم حصولی، علم لدنی اور علم حضوری. قرآن کیا بتا رہا ہے؟ کہ شعور کا درجہ ہے، اس سے نکلو الہام کے درجے پہ اور وحی کو سمجھو. اور کریں، اب قرآن کیا ہے؟
سر اللہ کی وہ ہے، مطلب آپ کے لیے میسج یا گائیڈ لائن، یا آپ کو کس طرح چلنا ہے؟
جی نہیں، اللہ کی بات، اللہ نے جو بات جیسے فرمائی ہے اس کو ڈائریکٹ میسج کو وہی کہا.
قرآن وہی ہے.
ہاں، اللہ نے بنی نو انسان کو، بنی نو آدم کو جو پیغام دیا، اس کو وہی کہا. اب چونکہ ہمیں اور آپ کو تو یہ شعور نہیں ہے کہ ہم وہی کی طرزوں کو سمجھیں، تو لہٰذا کیا کیا، اپنے ایک بندے کو اپنا محبوب بنا کر وہ بندہ اپنی اطلاع میں، غور و فکر میں اتنا آگے نکل گیا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ نے ان کو اپنا محبوب قرار دے دیا اور ان کو وہی کی کہ اپنی نو کو بتا دو. اب قرآن کیا ہے؟ اللہ کی بات ہے نا. اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں. میں نے کئی دفعہ مثال دی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو جائیں والناس تک، کون سا لفظ ہے جو آپ صحیح سمجھیں؟ دیکھیں نا، ہم بسم اللہ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ ترجمہ ہمیں دستیاب ہے، رٹایا گیا ہے، ہمارے شعور میں بٹھا دیا گیا. ہاں یا نہیں؟ ہم نے کبھی غور کیا کہ اس کا اصل مفہوم کیا؟ جب میں نے آپ سے توجہ دلائی اور آپ سے التجا کی کہ ذرا اسے خود بھی سائفر کریں نا، اس میں شروع کس کا ترجمہ ہے، تو آپ نے کہا اس میں تو لفظ ہی نہیں ہے. بے اس میں اللہ، اللہ کے نام پہ، یعنی اللہ کے لیے، लफ्जी तर्जमा क्या है? अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे करने का क्या मतलब है? अल्लाह के लिए या अल्लाह के बिहाफ पे कर रहे हैं आप एक काम? देखे ना ब्रिटिश पासपोर्ट पे क्या लिखा होता है, इन द नेम ऑफ क्वीन वी रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज टू असिस्ट द होल्डर ऑफ दिस पासपोर्ट। अब इन द नेम ऑफ अल्लाह अपना सॉरी क्वीन कहने का क्या मतलब है?
सर क्वीन की अथॉरिटी और वो सब,
क्वीन के बिहाफ पे हम आपसे ये इल्तजा कर रहे हैं, दरखास्त करते हैं कि इस पासपोर्ट के हामिल को हमारा शहरी समझते हुए उसकी पजीराई की जाए।
जी सर यही मतलब है।
तो बिस्मिल्लाह का क्या मतलब हुआ? बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम पे, जो रहमान और रहीम है, हमने मेहरबान और तर्जमा कर दिया रहम करने वाला। अरबी में रहम होता है, उर्दू में किया जाता है, इतना ही फर्क है।
जी सर बिल्कुल सही सर, बिल्कुल चेंज है तर्जुमा, बिल्कुल, और इतना वाजे हो जाता है सर, इतना समझ आता है।
अब देखे ना रहम से मुराद क्या है, अल्लाह ने लफ्ज रहम इस्तेमाल किया और मेरा और आपका फोकस वहाँ यूट्रस तक रहा, वूम तक रहा, रहम मादर तक रहा। नहीं, रहम से मुराद है तख्लीकी निजाम का सिस्टम, तख्लीकी निजाम। मैंने वो निजाम भी कह गया, सिस्टम भी कह गया। देखे तख्लीकी निजाम, तो रहमान कौन हुआ? जो तख्लीकी निजाम को बनाने वाला है। और रहीम कौन हुआ? जो रहम में बनाता है, यानी तख्लीकी निजाम को चलाता है।
जी चला रहा है, बिल्कुल।
तो बात वाजे हो गई?
जी सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत नॉलेज आएगा, थैंक यू सर,
आई एम सो ग्रेटफुल। देखें ये जो हमारे दिमागों में औरत को सप्रेस किया गया है, ये सब शऊर का निजाम है। इल्मे लुदुनी के मुताबिक अल्लाह कहता है कि दोनों बराबर हैं। देखें हजरत मरियम, सूरह मरियम में हजरत ज़करिया का भी किस्सा है और हजरत मरियम का भी।
जी ऐसे ही है।
एक कह रहा है कि मेरे बाल सफेद हो चुके हैं, मेरी बीवी बांझ है। अल्लाह कहता है कोई नहीं, मैं तुम्हें बेटा दूंगा। यानी उसके अंदर ये सलाहियत थी कि उसने ज़ायगॉट बनाकर उसके अंदर मुंतकिल करके हजरत याहिया को तख्लीक कर दिया, पैदा कर दिया। हजरत मरियम ने क्या किया? उन्होंने अपने इनर में मेल पार्टिसिपेशन के बगैर क्या किया? हजरत ईसा को तख्लीक करके दिखा दिया। तो दोनों की सलाहियतें अल्लाह ने उसी सूरत में बराबर नहीं दिखाई?
जी सर बिल्कुल ऐसे ही है।
तो बात वाज़े हो गई?
जी सर,
मैंने आपकी तवज्जो दिलाई कि फिजिकल रैल्म, उससे ऊपर जहनी रैल्म और उससे ऊपर स्पिरिचुअल रैल्म, यानी जिस्मानी निजाम, ज़हनी निजाम और रूहानी निजाम। इसी को मैंने क्या कहा? शऊर, इल्मे लुदुनी और वही।
जी सर, इल्मे लुदुनी पहले सर, आपने इल्मे हसूली, इल्मे लुदुनी और फिर इल्मे हसूरी, ये तीन तरह।
जी मतलब है कि देखें ये शऊर हो गया, इल्मे हसूली शऊर हो गया, इल्मे लुदुनी ज़हनी हो गया और वही रूहानियत हो गई। रूहानियत क्या है? रूहानियत क्या है? अल्लाह की बात को समझना, उस तरह समझना, यानी वही को समझने के काबिल हो जाना।
जी सर, अल्लाह की बात समझ,
आहा
और समझने की कोशिश।
बस इसी देखे ना, मैं अल्लाह ने हमें क्यों तखलीक किया, ताकि हम उसकी बात समझे, हमें अपना नायब बनाया ना
जी।
तो नायब का क्या काम है, अल्लाह पे हुक्म चलाना नहीं, अल्लाह पे हुक्म चलाना, ये कर और ये मत कर।
सर ये तो आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया था कि कॉन्सेप्ट ही बदल गया, इतना जबरदस्त है वो, तो वाकई में हम लोग अजीब जहालत में पड़े हुए थे।
अल्लाह आपको खुश रख दे। बात यह है कि देखिए हम मखलूक हैं, इस चीज का इदराक हमें हो जाए कि अल्लाह खालिक है, उसने अपने किसी मकसद के तहत हमें तखलीक की है, हमें अपनी सलाहियतों का अक्स हमारे अंदर उंडेल दिया, अपनी सिफात का सलाहियतें कह गया
जी।
वो
आपने जिस तरह हमें बताया है ना थॉट को, कि अल्लाह से किस तरह आपने अपने आप मतलब उसके नायब हैं और अल्लाह की बात माननी है, तो सर अपना आप एलिवेट लगने लगा है,
अल्लाह
लग रहा है कि हाँ हम
किसी, लेकिन साथ में इस एलिवेशन को कंट्रोल करना है कि फिरौन नहीं बनना।
नहीं 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 सर वो वाला नहीं सर, अच्छा लगता है कि अपने रब से इतना,
अब देखे हम कॉन्फिडेंट हो गए क्या
जी सर,
कॉन्फिडेंट हो गए, हमें ये जो मुआशरती शऊर है कम अज कम उसको इग्नोर करने का हौसला तो आया ना,
आ गया सर, बहुत अच्छा है।
हमें उससे टकराना नहीं है,
नहीं टकराना है सर,
हमें अपने आप को बिल्डअप करना है, ताकि मैं वो कर सकूं जो अल्लाह ने, अल्लाह चाहता है मुझसे करवाना।
बिल्कुल सर, इंशाल्लाह बेशक सर,
ठीक हो गया
जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम, एक्सप्लेनेशन, फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच,
टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ जी। जी और कोई,
थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर
जी। वालेकुम अस्सलाम
जी। सर मेरा क्वेश्चन है, जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को डिसेंड किया था अर्थ पे, तो वो फिजिकली डिसेंड किया था या इट वाज इट अ चेंज ऑफ डायमेंशन, ये क्या था मतलब जब वो डिसेंशन उन्होंने जो की थी,
ये कहानी जरा थोड़ी सी तफसील तलब है, इसको समझे। अल्लाह रब्बे करीम ने पूरा प्रोग्राम सोचा, कौन कहा, सारी रूहें बन गईं, फिर अल्लाह ने इन रूहों को हवास देने के लिए पूछा, अलस्तो बिरब्बिकुम, यानी जब अल्लाह ने फरमाया अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या ये सारा निजाम है, निजाम जो है तुम्हारे रब की सिफत रबूबियत के साथ नहीं है, ये आवाज, ये गुंजार रूहों के अंदर उनकी समात, उनकी हेयरिंग को एक्टिवेट कर गए। हेयरिंग जब एक्टिवेट हुई, उन्होंने सुना, उन्होंने सोचा कि क्या बोला गया, किसने कहा, क्या पूछा गया, ये आवाज क्या है, हाँ या नहीं, ऐसा हुआ होगा ना, जरा इमेजिन तो करें। देखे ना, एक कंप्यूटर है, उसको आप नया जब स्टार्ट करते हैं तो आप उसके मुख्तलिफ ड्राइव्स उसके अंदर लगाते हैं, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर उसके अंदर डालते हैं कि नहीं
जी सर।
यानी अब क्या किया, अल्लाह ने उनसे एक सवाल पूछा, सारी रूहों ने, उसमें जानवर भी हैं, उसमें हैवानात, फरिश्ते, जिन्नात, इंसान, सबकी रूहें आ गई। ये आलम अमरे आम कहलाता है, क्या कहलाता है, यानी कि जर्नल प्रोडक्शन, उनको हवास अता किए। देखे ना, कुत्ते में भी हवास है, सूंघने की हिस्स उसकी आपसे कहीं ज्यादा है, शहद की मक्खी अल्ट्रा वायलेट रेस देखती है, और करें, यानी ये हिस्सियात अल्लाह ने सारी मखलूक को अता की। फिर आदम की रूह को पकड़ा, वह नफख तो फी है मिनर रूही, और अपनी रूह में से कुछ खास बात उसके अंदर डाली, क्यों, क्योंकि अल्लाह ने सोचा हुआ था कि मैं इसको अपना खलीफा बनाऊंगा, तो खिलाफत की एबिलिटीज उसके अंदर मुंतकिल की ना, अब क्या हुआ, वल्लमल आदम इस्मा कुल्लाहा, आदम को फिर अल्लाह ने सिखाया, कौन सिखाता है,
अल्लाह
सिखाता है। इस आयत से ये भी साबित हो गया कि अल्लाह ने आदम को उन सलाहियतों का जो उसके अंदर फूंकी गई थी उनका इल्म अता कर दिया, कि इनको इस्तेमाल कैसे करना है, क्या इल्म अता कर दिया कि ये है तुम्हारी एक नाक है, तुम्हारी एक आंख है, तुम्हारे दो कान है, ये इल्म है? नहीं, इनको इस्तेमाल कैसे करना है, उन सलाहियतों के इस्तेमाल का इस इल्म देने के बाद कहा कि जरा करके दिखाओ, यानी डिमॉन्स्ट्रेट, क्या कहा, करके दिखाओ। जब उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया, अभी इसकी तफसील नहीं बताई कि कैसे डिमॉन्स्ट्रेट किया, ये हमें खुद सोचना है। वहां ये बताया जब उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया तो अल्लाह ने सबको कहा कि इसके सामने सजदा रेज हो जाओ, ठीक हो गया। अब जब सबने सजदा कर दिया तो क्या हुआ, अल्लाह ने क्या कहा कि जन्नत में रहो, क्या कहा कि आदम अस्कनल जन्ना वांता जौजो का, अपने जोड़े के साथ, जौज जोड़े को कहते हैं, जन्नत में रहो लेकिन इस दरख्त के करीब नहीं जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे, और शैतान से होशियार रहना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। मैं उस आयत का तर्जमा कर रहा हूं। अब ये सारा सीन आपके सेन में रहेगा तो आपको समझ आ जाएगी कि आदम का वजूद कहां बना, फिर जन्नत में रखा, फिर उसे नीचे उतार दिया, वाहबित नीचे उतरो। जब नाफरमानी की आदम ने, जब वो शैतान का शिकार हो गए तो क्या हुआ, उन्हें कहा नीचे उतरो, क्यों, ताकि तुम क्या कहा, मुस्तकर फिल अर्थ, जमीन में करार पकड़ो, वो मतान इलाहीन, और ये थोड़ी सी मुद्दत है। अब देखे ना वो सारी मुद्दत, पता नहीं, देखे ना हमारी रूहें अजल में पैदा हुई ना, अब अजल कब हुआ, लाखों करोड़ों साल पहले की बात है या नहीं, तो मेरी रूह असल में किस किस आप मुझे अब बुढ़ा कह रहे हैं, मैं तो अजली बुढ़ा हूं बल्कि हम सब अजली बुढ़े, हाँ गौर करें। अब ये 50 साल 100 साल जो उम्र रखी, ये मतान इलाहीन, ये हीन है, और आपकी तखलीक किससे की, यानी ये तफक्कुर जो है ये मट्टी में कीचड़ में कैद हो गया। अब जब दुनिया में पैदा हुए, आपका सवाल यहां था ना, मुझे इतनी पीछे तकरीर करनी पड़ गई कि आपको ये बात याद दिला दूं कि असल कहानी वहां से शुरू हुई, कौन कहने से, उसके बाद अल्लाह ने आदम के अंदर अपनी खसूसी सलाहियतें मुंतकिल की, इसको सजदा करवाया। अब मैं मस्जूद मलाइक हूं, मैं नहीं आप भी हम सब, ठीक है, उसके बाद हमें जन्नत में रहने को कहा गया, उसके बाद हमसे नाफरमानी हुई, हमने बगावत की, हम शैतान के बहकावे में आ गए, क्या कहा, नीचे उतरो और जमीन पे करार पकड़ो। अब ये हीन, और शैतान ने क्या एतराज किया कि इसको सजदा करूं जो तीन से बना है, खलक तनी मिन नार, आपने मुझे आग से तखलीक किया, मैं खैर मिन हो, मैं इससे अफजल हूं, वह खलक तो मिन तीन, इसको आपने सड़ी हुई गारे वाली मट्टी से बनाया, यानी आपका मादी वजूद गारा गिलासत है या नहीं। अब कहानी यह है कि आपसे कहा कि भाई ये मेरा सारा तखलीकी निजाम, क्योंकि तुमने मुझे असिस्ट करना है, पहले मेरे कारखाना है कुदरत के, ये 17 डिपार्टमेंट है, इनको सारे को विजिट कर लो, ये सबसे गंदा है, यहां से एहतियात से गुजरना, तकवा, अगर लुथड़ गए अपना तज़किया करके बाहर आना, वरना तुम सीट पे नहीं बैठने दूंगा। इतनी सी बात है। क्या हमने जिंदगी को कैसे गुजारा? हम कीचड़ में लुथड़े हुए हैं, अपने मुंह पे खुद ही मल रहे हैं या लोगों पे उछाल रहे हैं? अब मुझे बताएं, जब आप इस जोन से बाहर निकलेंगे कीचड़ वाले से, तो आपको कोई सीट पे बैठने देगा?
नहीं।
शर्त क्या रखी? के एहतियात से गुजरना। क्या कहा? हुदल्लिल मुत्तकीन। हजूरसलाम ने क्या कहा कि बर्तरी सिर्फ उसको हासिल है जिसको तकवा हासिल है। तकवा हमने पता नहीं क्या ड्रामा बना दिया। एहतियात से जिंदगी गुजारना। क्या एहतियात करनी है? कि शैतान का वार नहीं चलने देना। शैतान क्या करता है? हमें परेशान करता है। शैतान क्या करता है? परेशान करता है। अल्लाह क्या करता है? अल्लाह आपको खुश देखना चाहता है। मैं ये जुमला अक्सर कहता हूं, दोबारा समाज फरमा लीजिए, जो बंदा खुश है वो अल्लाह के करीब है। जो बंदा अल्लाह के करीब है वो खुश है। कितनी सिंपल सी इक्वेशन है। हम अल्लाह की मखलूक होने के नाते, अल्लाह का नायब होने के नाते, उस तरफ क्यों नहीं मतवजो जो अल्लाह हमसे, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने हमें तख्लीक किया। अल्लाह ने हमें क्यों तख्लीक किया? भाई अल्लाह चाहता है कि हम उसको सराहें। सराहेंगे कब? जब आप उसकी बात समझेंगे। आप मुझे कैसे सराह सकते हैं अगर आपको मेरी बात ही नहीं समझ आ रही? मैं आपको सराह सकता हूं? अगर मुझे आपकी बात ही नहीं समझ आ रही, मैं कहूंगा पता नहीं क्या बोल रहे, हाँ या नहीं? अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो हम्द का क्या मतलब है? क्या आई अप्रिशिएट यू? तो व्हेन विल यू बी एबल टू अप्रिशिएट हिम? व्हेन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हिम? इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग हिम। अब जाहिर है अल्लाह मेरे और आपके सामने तो है नहीं, को मादी वजूद तो है नहीं कि हम जाके उसे कहें कि अल्लाह ने क्या फरमाया आपने। नहीं, अल्लाह ने अपनी बात अपने महबूब के जरिए मुझ तक, आप तक पहुंचा दी। क्या? अपना कलाम, अपनी बात। हमने उस पर कोई सर लगाया? हमें तो जो मौलवी साहब ने बताया हमने उसको आमन्ना व सदकना कह दिया। खुद गौर नहीं किया। नतीजा आपको बताया गया कि बिस्मिल्लाह का ये तर्जमा, आप उसी को रटे चले जा रहे थे। वो एक बच्चे ने शोर मचा दिया कि यार ये जरा तर्जमे पे खुद गौर कर लो। ठीक हो गया?
जी सर, बिल्कुल हो गया सर।
वाजे हो गई बात?
जी सर, थैंक यू सो मच सर।
अल्लाह खुश रखे आपको जी। आपने इतना अच्छा सवाल पूछा कि मुझे वजाहत करनी पड़ गई। जी जी जनाब।
अस्सलामुअलैकुम सर।
जी वालेकुम अस्सलाम।
सर मेरा एक सवाल जहन में आ रहा था, मैंने कहा आपसे पूछ लूं। ये बुजुर्गी के बारे में सर जानना चाह रही थी कि बुजुर्गी से क्या मुराद है?
असल में बुजुर्ग का लफ्ज फारसी का लफ्ज है।
अच्छा।
और बुजुर्ग कहते हैं बड़े को।
सही हो गया सर।
अगर किसी की तोंद बड़ी है तो फारसी यही कहते हैं कि बुजुर्ग शिकम, उसका पेट बड़ा है।
अच्छा।
हमारे यहाँ जो बंदा उम्र में ज्यादा हो, आपसे बड़ा हो, आप उसको बुजुर्ग कह देते हैं।
जी सर, जी जी।
मैंने आपको इसकी असल अर्ज कर दी कि फारसी में इसका मतलब है बड़ा होना, चाहे वो पेट ही बड़ा। ठीक हो गया? अब हमारे यहाँ चूंकि उम्र का तकाजा, उम्र मैं जो बड़ा हूँ हम उसे बुजुर्ग कहते हैं।
जी सर यही आ रहा था ध्यान में कि हम तो उसे ही समझते हैं।
अब
सफेद हो गए।
तीसरी बात जी, ये बाल सफेद होने की बात पे सुन लीजिए। फारसी का एक शेर है, उसका तर्जमा अर्ज कर देता हूँ कि मेरे सफेद बालों की कदर करो, ये चांदी मैंने नकद उम्र के इवज खरीदी है। क्या मतलब हुआ? देखे ना, उसके पास शऊर का तजर्बा है, क्योंकि वो इसलिए लोग हाँ उसे बड़ा मानते हैं, इसलिए उसे बुजुर्ग कह देते हैं। आप देखें कि वो बड़े बुजुर्ग हैं। हमारे यहाँ इसका जो डिराइव्ड मतलब है बुजुर्गी का, वो ये कि बड़ा पाक साफ, बड़ा अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ अल्लाह चलने वाला बंदा। ठीक हो गया? तीनों मतलब वाजे हो गए?
बिल्कुल हो गए सर, बिल्कुल हो गए। थैंक यू सो मच सर।
जी
मेरा हो गया सर।
और कोई? एहतियात, तकवे का लुगवी मतलब है जौक रखना। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये हजूर कलंदर बाब औलिया ने किताब है तज़किरा कलंदर बाब औलिया, उसमें उनका एक खत है, उस खत में उन्होंने तकवे का तर्जमा बताया। क्या हमारे यहाँ तकवा जो है पता नहीं किस चीज को कहते हैं, वो किसी को क्लियर नहीं है। उन्होंने सलीस उर्दू में बताया कि जो बंदा जौक रखता है वो अल्लाह की बात को समझने में बड़ी एहतियात से काम लेता है। ये जो एहतियात है, हजरत उमर से पूछा गया कि तकवा क्या है, आपको पता उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कभी आप खारदार रास्ते से गुजरे झाड़ियों से? उन्होंने कहा जी। उन्होंने कहा कैसे गुजरते हैं? तो सवाल करने वाले ने बताया कि जी हम अपनी आबा अपने कपड़े समेट लेते हैं ताकि झाड़ियों में ना उलझे। तो हजरत उमर ने फरमाया बस यही तकवा है। देखे ना, एहतियात से जिंदगी बसर करना कि कहीं मुझसे अल्लाह के अहकामात के खिलाफ तो कोई बात नहीं हो रही, बस इस एहतियात का नाम तकवा है। देखे ना, हुदल्लिल मुत्तकीन, सूरह बकरा कैसे शुरू होती है? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल्लिल मुत्तकीन, ये उनको हदायत देती है जो समझने में एहतियात से काम लेते हैं। हमने तर्जमा कर दिया कि जी ये तो सुपरलेटिव डिग्री के मुत्तकी होते हैं, बड़ा पता नहीं कोई खास शक्ल सूरत होती है। नहीं 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 नहीं, अल्लाह रब्बे करीम कह रहा है कि हर वो बंदा जो बात को समझने में एहतियात करता है, ये किताब उसके लिए रहनुमा है, उसको हदायत देती है। यही मैंने अपनी इस तमसील में आपसे अर्ज किया ना कि कीचड़ के जोन से गुजर रहे हैं, हीन और तीन कीचड़ से गुजर रहे हैं। अल्लाह का निजाम है, हमें गुजारा जा रहा है। ये 50 साल मैंने अर्ज किया, लाखों साल की उम्र के मुकाबले में ये 50 साल में खोए हुए हैं। हम इसको कुल जिंदगी माने बैठे हैं या नहीं, ये गलत है। अगर हम एहतियात करेंगे तो क्या 50, 60, 80 साल, 100 साल कैसे गुजरेंगे? आप खुशी खुशी गुजर जाएंगे।
थैंक यू सर।
वेलकम जी। जी
अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम अस्सलाम।
सर समझ कि सूरह नहल की आयत नंबर 24 है, पिछली क्लास में हम अपने बहनों के साथ पढ़ रहे थे, लेकिन बाद में मैंने गौर किया तो ये बात मेरी समझ में इसलिए नहीं आ रही थी, जरा सा आप इसको जरा क्लियर कर दीजिए सर। वो ये है कि आयत नंबर 24 उसमें ये लिखा है
जी,
जान रखो कि اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرح تم سمیٹے جاؤ گے. تو اس دن پھر ہماری بہنیں اس تو شرون کا ڈیٹیل یہ بھی بتا رہے تھے کہ حشر کی کتاب. تو یہ ذرا دو چیزیں مجھے اس میں سمجھ.
حشر کا مطلب ہے جمع کرنا.
کہ اللہ تعالیٰ ہے آدمی. اچھا جی,
اطلاع کا حاصل کرنا حشر ہے. کیا کہا میں نے؟ اطلاع کا حاصل کرنا ہی حشر ہے. حشر نشر, وہ مقام جہاں پہ پہنچ کے روح انسانی جو ہے, انسان کی روح اللہ کی اطلاعات کو براہ راست وصول کرے گی, اس کا نام ہے حشر. اور نشر کرے گی اللہ کے بہاف پہ. غور کریں ہم نے کیا ترجمہ کیا ہوا ہے.
اچھا,
ایک مصیبت کا عالم ہوگا.
جمع کیے جائیں گے.
آپ اطلاع کو جمع کرنا کیوں نہیں لے رہے؟ آپ اس میں اللہ کی طرف سے دی گئی اطلاع کو دیکھیں. اللہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اطلاع ہی ہے نا. میں عرض کر رہا ہوں تو یہ کیا ہے؟ میرے خیالات جو ہیں وہ آپ تک ایک اطلاع کی صورت میں پہنچ رہے ہیں نا, تو آپ جمع کر رہے ہیں.
جی ہاں.
اور اس کے بعد آپ آگے کسی کو بتائیں تو یہ کیا ہوا؟ نشر کرنا ہوا یا نہ ہوا؟ اب اس کی تھوڑی سی تفصیل سن لیں ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی. تھوڑی سی تفصیل ہے. دیکھیں, جب انسان عالم عراف میں گیا تو اس کے حواس کی رفتار بڑھ گئی. کتنی بڑھ گئی؟ جب آپ سوتے ہیں تو 70 گنا ہو جاتی ہے. 70, ٹھیک ہے, 70 ٹائم. لیلۃ القدر کے حواس کا ذکر کر کے اللہ نے بتایا کہ یہ 70,000 ٹائمز ہو جاتی ہے. الف شہر, ہزار مہینے. ہزار مہینے کو ایک رات سے ایکویٹ کریں تو 70,000 کا انسا آئے گا. بھائی 30,000 صبح, 30,000 شام میں, 30,000 دن, 30,000 راتیں.
بالکل جی.
اس کو جمع کریں تو یہ مطلب ہے رات کی ڈیوریشن کتنی ہوتی ہے؟ 24 کے مقابلے میں 10 گھنٹے ہی ہوتی ہے. بہت ہو تو 12 گھنٹے ہو جاتی ہے, 14 گھنٹے ہو جاتی ہے, تو ایوریج پھر آ کے وہی 8-10 گھنٹے پہ آتی ہے. تو جب ہم 24 سے اس کو ایکویٹ کرتے ہیں تو یہ 70,000 گنا ہو جاتی ہے. موت کے وقت آپ کے حواس کی رفتار 3,65,000 گنا ہو جاتی ہے. اس کے نتیجے میں باڈی ڈسکارڈ ہو جاتی ہے. باڈی کو آپ کی روح ڈسکارڈ کر دیتی, کیا لفظ بولا, ڈسکارڈ, چھوڑ دیتی ہے, اتار کے پھینک دیتی ہے لباس کو. کہتی ہے اب میں اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. اس کے بعد یوم القیامہ. اس کے بعد ہم دنیا میں قیامت مچائے بیٹھے. قیامت آ گئی. غور ہی نہیں کرتے کہ بھئی زندگی کے بعد موت ہے, موت کے بعد حواس قائم ہوں گے روح کے. کیا کہا میں نے؟ یعنی ابھی ہم بیداری اور خواب کے حواس میں آلٹرنیٹ ہو رہے ہیں, پھر اعراف میں ہم خواب اور روح کے حواس میں آلٹرنیٹ ہوں گے, پھر روح کے حواس قائم کر دیے جائیں گے. اس کو یوم القیامہ, یعنی کوئی چیز قائم کر دی جائے گی. یوم القیامہ, قیام, 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 کوئی چیز قائم کر دی جائے گی. کیا چیز قائم کر دی جائے گی؟ آپ کی روح کے حواس قائم کر دیے جائیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ حضور قلندر باب اولیا نے کتاب لوح قلم میں وضاحت کی ہے. اس کے بعد جب آپ روح کے حواس سے آگے چلیں گے, اس وقت آپ کی رفتار ہو جاتی ہے 36,50,000 گنا. حواس کی رفتار آپ کی نہیں. اگر ذہن کی رفتار ساتھ نہیں دے رہی, سٹیرنگ پہ کنٹرول نہیں ہے, تو کیا ہوگا؟ گاڑی ٹھک جائے گی. اور اگر یہ رفتار مزید بڑھتی رہے, آپ ایوالو کرتے رہیں, ترقی کرتے رہے, تو آپ حشر نشر میں پہنچ جائیں. اس وقت آپ کے حواس کی رفتار ہوگی 2 کروڑ گنا. اب اس سے اندازہ کر لیجئے کہ اللہ کا نظام کتنا وسیع ہے. اب آپ نے اللہ کی طرف سے آنے والی اطلاعات کو وصول کیا اور اللہ کے بہاف پہ اس کو نشر کیا. اس کا نام ہے اصل میں حشر نشر. ہم نے کیا تماشا مچایا ہوا ہے, کہانی سنائی ہے کہ جی اللہ میاں عدالت میں بیٹھے ہوں گے, سب کو جمع کیا جائے گا اور پھر دائیں والے اور بائیں والوں کی چترول ہوگی, بائیں والوں کی چترول ہوگی, دائیں والوں کو کہا جائے گا شاباش. سورہ واقعہ پڑھیں, اس میں تذکرہ سابقون کا. وہ جنہوں نے اس دنیا سے گزرتے ہوئے ہر قدم پہ سبق سیکھا اس کو سابقون کیوں نہیں کہہ رہے ہم؟ دیکھیں نا, تین باتیں ہیں, یا آپ دائیں جائیں گے یا بائیں جائیں گے. اللہ نے کہا اگر بائیں جاؤ گے اصحاب الشمال تو جہنم, اگر دائیں جاؤ گے تو جنت, اگر سیدھے آؤ گے تو مجھ سے ملو گے, میں تمہیں سابقون یعنی میرے ساتھ بیٹھو گے تم. کیا مطلب ہوا سابقون الاولین؟ وہ جو سابقہ میں سے پہلے تھے. یہ سارا جب آپ کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا نا, دیکھیں نا انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے, بچے کو آپ دیکھیں ذرا دھیان سے, کیا ہے وہ حواس کا مجموعہ ہے, لیکن وہاں پہ اس وقت اس کی رفتار زیرو ہے. اس کے بعد وہ آہستہ 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 ان کا استعمال سیکھتا ہے, پھر وہ ایک رفتار بن جاتی ہے. جب سوتا ہے تو وہ 70 گنا ہو جاتی ہے, وہاں ٹائم اینڈ اسپیس کٹ جاتے ہیں. پھر جب یہ عالم اعراف میں مستقل رہنا چاہتا ہے تو وہاں پہ وہ اس کے حواس کی رفتار 365,000 گنا ہو جاتی ہے. پھر اس سے اوپر قیامت ہے, وہاں پہ 36,50,000 گنا. پھر جب یہ حواس کی رفتار, پتہ نہیں اس میں کتنے لاکھوں سال لگیں گے, کروڑوں سال لگیں گے, ہزاروں سال لگیں گے یا سینکڑوں سال لگیں گے, کوئی پتہ نہیں. وقت کے ساتھ ساتھ آپ گرو کریں گے. اب چونکہ اصل بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم نے بتائی ہوئی بات کو اپنا لیا اور ایک تصویر بنا کر بیٹھ گئے کہ وہاں سب کو جمع کیا جائے گا پھر نشر کیا جائے گا. حشر نشر کر دیا تم نے تو. اصل لفظ کے دیکھیں, لفظی میں کیا عرض کرتا ہوں, الفاظ کی روٹ کو پکڑیں, اس کے مادے کو پکڑیں, تو پھر غور کریں گے تو اصل مفاہیم کی طرف اللہ رہنمائی کرے گا. کون؟ اللہ رہنمائی کرے گا, کسی بندے کی مجال نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کو سمجھا سکے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ توشرون سے بات ساری واضح ہو گئی. معافی چاہتا ہوں, آپ کی آواز پھٹ رہی ہے, ٹوٹ رہی ہے. آپ ذرا دوبارہ بات دہرا دیں, بالکل نہیں سمجھ آئی کہ کیا فرمایا آپ نے. یعنی کہ یو ہیو ٹو نو اٹ. ہاں جی, یو ہیو ٹو نو اٹ.
جی,
یعنی کہ یہ چیزیں ہیں جن کا آپ کو شعور حاصل کرنا ہے, جن چیزوں کو آپ کو جاننا ہے.
جاننا ہے
یعنی دیکھیں نا, اب
آدمی
جی یعنی کہ دیکھیں, بندہ جو شعور ہے اور جو دل جو اللہ کی طرف ہے. اللہ کہاں رہتا ہے؟ دل میں رہتا ہے نا. تو دل سے یعنی کہ اللہ کی طرف سے جو اطلاعات آتی ہیں ہمیں ان کو جاننا ہے. آپ نے اسی کو پردہ بنا لیا, اپنے دلی خواہشات کو پردہ بنا کے بیٹھے ہوئے. دلی خواہشات سے مراد ہے ہمارا ہی سوچ, ہماری فہم, جو ہم سمجھے ہیں وہ فائنل ہے. نہیں بھائی, جو میں سمجھا ہوں وہ میرا شعور ہے. مجھے اللہ کی بات سمجھنی ہے, مجھے زور لگانا ہے.
بالکل
واضح ہو گئی بات؟
بالکل صحیح.
شکر الحمدللہ, شکر الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا جی؟ کافی ہے یہ, ہے کوئی اور سوال؟
مکمل ہو گئے.
چلیں شکر الحمدللہ, شکر الحمدللہ, شکر الحمدللہ. نہیں نہیں آپ کریں, آپ سوال کریں, میں اسے مختصر جواب دے دوں گا نا, ابھی لمبے دیے. چلیں, موسٹ ویلکم. اللہ حافظ. اللہ حافظ.